शाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं मेरे प्रिय वरिष्ठ गुरु भाई इस ग्रेस दामोदर पंडित प्रभु जी का आशीर्वाद चाहूँगा। हरे कृष्णा। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी वरिष्ठ नागरिक रिश्तेदार आए हैं उनका भी आशीर्वाद चाहूँगा। और आप सब लोगों का आज श्रीमान विजय और सौभाग्यवती विजय लक्ष्मी जी के इस विवाह समारंभ के स्वागत समारंभ में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। मुझे बहुत ही खुशी हुई, मैंने विजय से भी पूछा उनका नाम क्या है तो उन्होंने कहा कि विजय लक्ष्मी है। हरे कृष्णा। भगवान भी बड़े दयालु हैं, जब भी कोई जोड़ी बनाते हैं बड़े सोच समझ के बनाते हैं और जो भी करते हैं वो बड़े क्या कहते हैं, उनके दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो भी होता है उसे हमें पता होना चाहिए कि कुछ समय के बाद में होता है कभी कभी, लेकिन जो होता है वो बहुत ही परफेक्ट और परिपूर्ण होता है। और वो जो परफेक्ट घटनाएं भगवान करते हैं वो परफेक्ट घटनाएं हमारे जीवन में स्वीकार करने के लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है, वो भी उनकी ही योजना है। और इसलिए हमें हमेशा भगवान के द्वारा हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उसके लिए उनका हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए, चाहे वो उनका अर्थ उस समय हमें समझ में आए या नहीं आए। लेकिन जब भी समझ में आए वो आता रहेगा, लेकिन जब भी वो होता रहता है तभी हमको उनको हमेशा धन्यवाद देता रहना चाहिए। खास करके जब हमारे मनपसंद घटनाएं नहीं होती है कभी कभी, उस समय भी हमको उनका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उस मनपसंद ना होने वाली घटना में भी उनका कोई बहुत ही श्रेष्ठ उद्देश्य होता है, जिसके वजह से वो अपने भक्तों के जीवन में ऐसे प्रसंग भेजते हैं जिनके द्वारा उनकी आत्मशुद्धि होती है और आगे जाकर जो सुंदर भक्तिमय जीवन आने वाला है और प्रगति के रास्ते पर आने वाला है उसमें हम अच्छी तरह से भगवान की सेवा कर सकें। और धन्यवाद की भावना ये ऐसी भावना है, एक श्रेष्ठ भावना, कृतज्ञता की भावना, जिससे एक भक्त का जीवन जो है बड़ा समृद्ध बन जाता है, ऐश्वर्य संपन्न बन जाता है। ग्रैटिट्यूड इज द वेल्थ ऑफ डिवोटीज लाइफ। और उसी धरती पर उसी नींव पर मैं श्रीमान दामोदर पंडित जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जब बहुत बहुत पहले जब हम इस मार्ग में आने के प्रयास में थे, विद्यार्थी अवस्था में थे, तो हमारा दामोदर पंडित जी संपर्क हुआ था और उन्होंने बड़े ही प्रेम से हमको भगवान की भक्ति में प्रेरणा दी थी। और वो उनकी पत्नी मेरू देवी हमारे लिए बहुत प्रेम करते थे और हमें भक्ति मार्ग को अपनाने में और भक्ति मार्ग को आगे चलाने में उन्होंने बहुत प्रेरणा दिया है, इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। उनकी हमारी बहुत पुरानी और बहुत मीठी मीठी यादें हैं। हरे कृष्णा। तो विवाह संस्कार ये 55 संस्कारों में से एक संस्कार है और संस्कार केवल मनुष्यों के लिए होते हैं, सबसे बड़ी बात है। संस्कार कभी भी जानवरों के लिए नहीं होते। ये सारे संस्कार जो हैं, गर्भ संस्कार, गर्भाधान संस्कार, नाभि संस्कार, हाँ, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत, ऐसे जितने भी संस्कार हैं अंत्य संस्कार तक केवल मनुष्य के लिए होते हैं। और ये संस्कार मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि वो भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में हमें सहायता करते हैं। और विवाह संस्कार भी वैसा ही एक पवित्र संस्कार है जो गृहस्थ आश्रम में दो जीवों को प्रवेश करने के लिए मदद करता है। और जैसे भगवान ने चार आश्रम निर्माण किए हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, वो सभी कर आश्रमों का जो उद्देश्य है वो एक ही है, भगवान की सेवा करना। बाकी तीनों आश्रम में तो विवाह नहीं होता है, ब्रह्मचारी आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी आश्रम, इसमें तो विवाह की गुंजाइश नहीं है, एक ही आश्रम में विवाह की गुंजाइश है। लेकिन चारों आश्रमों का जो उद्देश्य है वो एक ही है, भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति। तो इसमें इस संस्कार में एक महत्वपूर्ण जो विधि है वो है जो विवाह संस्कार का अर्थ जो है समझना। क्योंकि आम तौर पर आप देखते हैं समाज में जितनी भी जवान लड़के लड़कियां विवाह करते हैं वो केवल इंद्रिय भोग के लिए विवाह करते हैं, एक दूसरे के यौवन से और सौंदर्य से आकर्षित होकर शरीर का भोग लेने के लिए विवाह संस्कार होता है उनके लिए। और फिर जब तक दूसरे को आनंद मिल रहा है तब तक उनका विवाह बना रहता है, और जैसे ही आनंद मिलना बंद हो जाता है या मतभेद होने लगता है तो विवाह फिर उनका किसी और दिशा में प्रगति करता है, यानी कि दूर होने के लिए। लेकिन जब भक्त लोग जैसे हमारे विजय प्रभु हैं और उनकी सुविद्य पत्नी हैं, ये लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, इनके जीवन की जो विवाह संस्कार की जो नींव है वो भक्ति है, भगवान की सेवा है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा है कि एक व्यक्ति को राजा बनने का अधिकार नहीं है, एक व्यक्ति को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति को पति बनने का अधिकार नहीं है, और किसी का स्त्री को माता बनने का अधिकार नहीं है, जब तक उनके ऊपर जो निर्भर लोग होते हैं, राजा के ऊपर प्रजा, गुरु के ऊपर शिष्य, पति के ऊपर पत्नी और बालक, और पत्नी मतलब स्त्री के ऊपर बालक, जो भी निर्भर होते हैं उनके आध्यात्मिक जीवन का विश्वास गारंटी अगर नहीं होता है कि वो उनकी जिम्मेदारी देंगे और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उनको मदद करेंगे भगवान तक पहुंचने के लिए, तो इनमें से कोई भी व्यक्ति बनने का उनको अधिकार नहीं है। मतलब राजा को राजा बनने का नहीं है, पति को पति बनने का नहीं है, स्त्री को माता बनने का नहीं है, और गुरु को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, ऐसे श्रीमद् भागवत में लिखा है। तो पति का जो कर्तव्य है, ऐसे आप आजकल जो विवाह होते हैं वो जो होते हैं पुरोहित वो सब वचन लेते हैं, और कन्या और जो लड़का है वो केवल मम्मा बोलते हैं, हाँ, और सारे जो वचन है शादी के वो भटजी ले लेता है पुरोहित। लेकिन जो भक्त लोग विवाह करते हैं उनको इसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। जो पति है उसको पत्नी के जीवन का जो मेंटेनेंस है वो करना बहुत आवश्यक है। आजकल के ज़माने में स्त्रियां भी काम करती है और धन भी कमाती है, लेकिन फिर भी एक पति का कर्तव्य है कि स्त्री के पत्नी के नौकरी के बगैर भी उसको उसका पालन करने का सामर्थ्य पति में होना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है उसके आगे जाकर कि वो जो भावनाओं का सपोर्ट है जो एक नई आने वाली पत्नी को ज़रूरी होता है। हमने एक जोक पढ़ा था कि एक पत्नी को एक पति एक पत्नी अपने पति को कहती है तुम अपने आप को बड़ा क्या कहते हैं उसको होनहार और शक्तिशाली समझते हो, लेकिन शक्तिशाली तो मैं हूँ क्योंकि आप तो 100 लोगों की बारात लेकर आए थे और मैं अकेले आपके घर पे आई हूँ। लेकिन जो व्यक्ति अपना पूरा घर संसार भाई बहन माता पिता मायका सब छोड़कर पति के घर में अकेले आती है और सब नए हैं उसके लिए, एवरीबॉडी इज न्यू इंक्लूडिंग हस्बैंड, पति भी नया है, नया व्यक्ति है, नया रिश्ता है, और सब लोगों के साथ में उनको समझ बूझ के रिश्ता बनाना है, हाँ, यू हैव टू एडजस्ट विद एवरीबॉडी. कितना बड़ा चैलेंज है उस नौजवान स्त्री के लिए. तो ऐसे स्थिति में जब केवल पति के साथ नहीं लेकिन हर पति के घर के हर व्यक्ति के साथ में उसको समझ बूझ के रिश्ता बनाना है, सबको संतुष्ट रखने का प्रयास करना है, सबको प्रसन्न करना है, कितना बड़ा चैलेंज है. और पति के लिए तो केवल एक ही व्यक्ति के साथ नया एडजस्ट करना है, वो पत्नी है. तो इस समय पति पत्नी को बहुत ही भावनाओं की सपोर्ट की आवश्यकता होती है ताकि वो इस अपने नए चुनौतियों में यशस्वी हो जाए और इन रिश्तों में भी यशस्वी हो जाए. पति की सहायता की बहुत ज़रूरत होती है, उसको समझने की, उनको इमोशनल सपोर्ट देने की आवश्यकता होती है. कई लोग इसमें फेल हो जाते हैं, ये भी आपको बताना ज़रूरी है. तो इसमें पति का जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो माता पिता और रिश्तेदार एक साइड में हैं और नई नई आई पत्नी एक साइड में है और दोनों के बीच में बहुत ही कुशलता से अच्छे संबंधों को बढ़ाने के लिए मदद करना पति का बहुत बड़ा कर्तव्य है. फिर पत्नी को आश्वासक भूमिका अदा करना बहुत ज़रूरी है पत्नी के लिए ताकि उनको ये विश्वास उत्पन्न हो कि पति मेरा कल्याण चाहते हैं, हर समय मेरे साथ रहेंगे, संकट में और कठिनाइयों में मुझे भावनाओं का साथ देंगे, शरीर से भी साथ देंगे, हर तरफ से मदद करने के लिए वो हमेशा रहेंगे. ये विश्वास उनके हृदय में पैदा करना अपने व्यवहार से बहुत आवश्यक है. साथ में प्रेम और देखभाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रेम के बिना कोई रिश्ता तो आगे बढ़ता ही नहीं है. प्रेम होना बहुत ज़रूरी है और प्रेम से ही रिश्ते बनते हैं और आगे बढ़ते हैं और जीवन में यश को प्राप्ति कर सकते हैं. क्योंकि विवाह संस्कार ऐसा संस्कार है जिसमें दो जीव दो आत्माएँ एकत्र होती है एक उद्देश्य को लेकर, यानी कि एक आत्मा बन जाती है उद्देश्य से लेकर. और प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है पत्नी के लिए. पति के द्वारा भावनाओं की सुरक्षा, उसके भावनाओं की कदर करना, उसकी रक्षा करना, शरीर की रक्षा तो है ही और आर्थिक दृष्टि से रक्षा, मतलब वो ऐसा एश्योरेंस होना चाहिए कि मेरी हर प्रकार से देखभाल की जाएगी, कहीं कमी नहीं होगी किस स्थिति में. और सबसे ऊंचा जो है वो आर्थिक सपोर्ट के भी ऊपर वो सपोर्ट है, वो जो भावनाओं का प्रोटेक्शन. सबसे ज़्यादा स्त्रियां टूट जाती है जब उनको भावनाओं का सपोर्ट नहीं मिलता है. सब कुछ होने पर भी वो उदास और अकेले रहती है जब उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, प्रोटेक्शन नहीं मिलता है. आने वाले संकटों को सामना करने के लिए पति का सहारा बहुत आवश्यक है. और इन सब के ऊपर जैसे शरीर का हो गया, मन का हो गया, भावनाओं का हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, इस सबके ऊपर जो है वह है आध्यात्मिक मार्गदर्शन जिसके लिए एक्चुअली विवाह किया जाता है. पत्नी का पति का ये सब कर्तव्य के बाद में प्रमुख कर्तव्य हो ये है कि पत्नी को आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना जिससे कि वो हमेशा भक्ति के मार्ग में उत्साह प्राप्त करे. मुझे अभी भी याद है दामोदर पंडित जी ने हमको बताया था शुरू शुरू में कि पत्नियों को उत्साह देने की बहुत ज़रूरत होती है. वन मस्ट बी ऑलवेज वेरी एनकरेजिंग टू वंस वाइफ टू मेक प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ. भक्ति मार्ग में प्रगति करने के लिए उनको उत्साह देना, हौसला देना, प्रेरणा देना अपने उदाहरण से, अपने वचनों से, अपने भावनाओं से बहुत आवश्यक है. और ख़ास करके पति होने के नाते शब्दों से कम व्यवहार से अधिक प्रेरणा देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर पति जो है वो शब्दों से बहुत प्रेरणा देते हैं और व्यवहार से उसको थप नष्ट कर देते हैं. बिकॉज वर्ड्स आर वेरी इजी टू स्पीक बट एग्जैक्टली द बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिबिट. तो सबसे अधिक प्रेरणा स्त्री को पति के व्यवहार से मिलती है और फिर कभी ज़रूरत पड़े तो वचनों से भी मिल जाती है, लेकिन व्यवहार अधिक ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं वचनों से भी. तो हम सब विवाह करते समय भगवान के सामने, वैष्णवों के सामने, माता पिताओं के सामने, रिश्तेदारों के सामने, वरिष्ठों के सामने ये वचन देते हैं कि जिस स्त्री का मैं पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, इन सब के सामने उनका उच्चारण करते हैं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा राधा गोपीनाथ जी गौर निताई जी और प्रभुपाद जी, इनके सामने मैं ये वचन देता हूँ कि मैं विजय लक्ष्मी का पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ और ये वादा करता हूँ कि मैं उन्हें पूर्णतः आध्यात्मिक मार्गदर्शन करूँगा और हम दोनों मिलकर आपकी सेवा करेंगे, ऐसा वादा करते हैं. तो तो ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन जो है वो विवाह संस्कार का प्राइम कर्तव्य है, और उसको करने के लिए बाकी सारे सपोर्ट देने होते हैं, क्योंकि वो सब मिलने के बाद में पत्नी आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने की स्थिति में होती है, अनुकूल स्थिति में आप उनको लाके रखते हैं, तब जाकर वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन वो स्वीकार कर सकती है। उसी तरह से पत्नी के भी कर्तव्य हैं, पत्नी भी भगवान के सामने सब विग्रहों के नाम लेकर और प्रार्थना वचन लेती है कि मैं श्रीमान विजय प्रभु जी का पति के रूप में स्वीकार कर रही हूँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं उनके भगवान की सेवा में उनकी सहायता करूँगी, हर प्रकार से ऐसा व्यवहार करूँगी कि जो मेरे पति के भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल और उत्साहवर्धक होगा। हाँ, क्योंकि पत्नी का ऐसा पोजिशन होता है कि पत्नी जैसा व्यवहार करेगी वैसे पति को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी या तो वो डिस्करेज हो जाएगा। तो पति कितने उत्साह से घर पे आएगा कुछ करने के लिए और कुछ उत्साह की बातें करेगा, और अगर पति पत्नी ने कहा कि हाँ जानती हूँ आप क्या करने वाले, तो पूरा होता ना गुब्बारा, वो पूरा सारी हवा निकल जाती है उसके अंदर से। तो पत्नी का संभाषण जो है वो बहुत ही सोच समझ कर और मधुर और उत्साहजयी होना चाहिए, ताकि पति का जो उत्साह है वो भगवान की भक्ति में बना रहे। और हमें सीता जी की हमेशा याद आती है जब हम विवाह बंधन के बारे में सोचते हैं। जब प्रभु रामचंद्र का समय आया जंग वनवास में जाने का, तो उन्होंने कहा सीता जी आप मत आइए, आप तो ऐसे महल में रही हो जिसमें कभी जमीन पर कदम भी नहीं रखे आपने, इतने सुंदरता से आपको अपने पिता ने बढ़ाया है, मतलब वर्धन किया आपका, लालन पालन किया है आपको जंगल में, वो जंगल के जानवर हिंस्र जानवर और राक्षस और ये कठिनाइयाँ पत्थर कंकड़ जमीन पे सोना ये सब आपको नहीं होगा। तब सीता जी ने प्रभु रामचंद्र जी को बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जब मेरे पिता के नगरी में मिथिला में जब मेरा विवाह संस्कार हुआ था, तब मैंने वचन लिया था कि सुख और दुख में हम आपके साथ रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप राजकुमार थे, युवराज थे, राजा बनने वाले थे, हरे कृष्ण प्रभु जी वेलकम, इसका मतलब ये नहीं कि जब हम राजकुमार थे, युवराज थे, राजा बनने वाले थे, वो सारा जो ऐश्वर्य था, सम्मान था, सब लोग वाह वाह कर रहे थे, विजय की उद्घोषणा कर रहे थे, आनंद मना रहे थे, तब तक मैं आपके साथ भी हूँ, एक क्षण में सब नष्ट होता है और उनको वलकल यानी कि पेड़ की खाल पहनकर जंगल में जाना होता है। तो वो कहती है कि मैंने पिता के घर में आपको वचन दिया था कि सुख में और दुख में आपके साथ में रहूँगी, तो मैं मेरे पिता को शर्मिंदा नहीं करूँगी, जहाँ पर भी आप रहेंगे, जैसे भी आप रहेंगे, आपके साथ में रहूँगी। तो प्रभु रामचंद्र ये चाहते नहीं थे कि वो साथ में चले और उनको कष्ट हो जाए, लेकिन जब पत्नी का ये भाव उन्होंने देखा तो उनको कितना हृदय में गर्व होगा कि मेरी पत्नी कितनी भावुक है और कितना पति के भाव से एक रूप है, पति की स्थिति से एक रूप है, मन से, तन से, भावना से, हर स्थिति से एक रूप है। तो ये तैयारी जो है, जरूरी नहीं कि आपको वनवास में जाना पड़े अब में से कोई वनवास में नहीं गया है, ना जाना पड़ेगा शायद, लेकिन तैयारी मन में है कि जो भी होगा हम साथ में रहेंगे, जो भी चुनौती आएंगी जीवन में, जो भी संकट आएंगे, जो भी खुशी आएंगी, सब साथ में उसको निभाएंगे। उसी से रिश्ते बनते हैं, उसी से गहराई आती है, उससे ही प्रेम बढ़ता है, और वही सच्चा विवाह संस्कार और विवाह जीवन का रहस्य है। बचपन में हमने सुना था कि पत्नी जो होती है ना, वो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, डॉक यार्ड को क्या कहते हैं हिंदी में, मराठी में बंदर कहते हैं, मतलब बने समुद्र का किनारा या खाड़ी का, हाँ बंदरगाह, करेक्ट बंदरगाह। तो पत्नी को बंदरगाह की तरह उपमा दी गई है, मतलब क्या है, पति जहाज की तरह होता है, बोट की तरह होता है, वो अपने जीवन में अनेक चुनौतियों को सामना करते हुए समुद्र में यात्रा करता है, बहुत दूर दूर तक जाके यात्रा करता है, बीच में कभी नुकसान होता है, कभी कुछ धक्का लगता है, कभी कुछ इंजरी होती है, कुछ होता है मन में शरीर में, तो फिर जहाज लौट के कहाँ आता है, बंदरगाह में आता है, वहाँ पर उसकी मरम्मत होती है, उसकी रिपेयरिंग होती है, उसकी पेंटिंग होती है, उसकी उसको पोषण प्राप्त होता है, और फिर दोबारा वो जहाज जो है मतलब बोट जो है नाव जो है वो फिर दूसरी सफर करने के लिए आगे तैयार हो जाती है। तो पति उस जहाज यानी कि बोट की तरह है और पत्नी बंदरगाह की तरह है, जहाँ पर पति आके विश्राम प्राप्त करता है, मरम्मत प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, उत्साह प्राप्त करता है दोबारा जीवन की चुनौतियों को सामना करने के लिए। तो ये आश्रय तत्व जो है यही तत्व राजा रानी का है, वो भी आश्रय देती है। हाँ, तो ये ऐसा आश्रय है जिससे पति को पुनर्जीवन पुनर्शक्ति प्राप्त होती है, उत्साह प्राप्त होता है। तो वैसे रहना ये पत्नी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। साथ साथ में वो पत्नी का एक और एक पोजीशन है, पावर है, वो है हीलिंग पोटेंसी। यानी कि जब भी पति उदास होता है या कोई दुख प्राप्त करता है या कोई ऐसे अनुभव करता है, चुनौतियों में कभी ठोकर खाता है, कभी जीवन तो ऐसा ही है, जीवन तो सब जगह हर समय यश नहीं प्राप्त होता है, लेकिन जब जब ऐसे प्रसंग आते हैं तो पति अपने पत्नी के पास आकर अपना हृदय खोल कर बात कर सकता है। तो उस समय उत्साहवर्धक आश्वासक वचन कहकर पति का उत्साह बढ़ाना, उसको निरुत्साह न होने देना, कमज़ोर न होने देना, ये पत्नी का बहुत बड़ा ड्यूटी है। उनका ये पोटेंसी भी है कि वो ये कर भी पाती है और दोनों मिलकर भी कुछ कर्तव्य को निभाते हैं। सबसे बड़ा कर्तव्य तो दोनों मिलकर निभाने का वो है कि वैष्णवों की सेवा करना। सबसे शक्तिशाली ये कार्य है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़ा आसान कार्य है कि पति पत्नी मिलकर भगवान की सेवा करते ही हैं और साथ साथ में वैष्णवों की सेवा भी करते हैं। वैष्णवों का घर में आना ये विवाह जीवन का एक बड़ा अलंकार है। अगर वैवाहिक जीवन में अगर वैष्णव मेहमान नहीं आते होंगे तो हमारा वैवाहिक जीवन एक खाली कुएं की तरह है, इसमें जल ही नहीं है। तो वैवाहिक जीवन में वैष्णवों का अतिथि के रूप में आना और उनके नित्य नियमित रूप से सेवा होते रहना ये बहुत ही भाग्य की बात है। इसलिए वैष्णवों के जितने अधिक संख्या में आपके घर में वैष्णव आते हैं उतने आप अधिक धनवान हैं, ये बात समझना। और साथ में साधना करना, भगवान के विषय में नाम जप और साधना के जो कार्य हैं शास्त्र अध्ययन वो नियमित रूप साथ में करना, एक दूसरे को उत्साह देना, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। साथ में भगवान के जो पवित्र स्थान है उनकी यात्रा करना ये भी बहुत ज़रूरी है। ये विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। सारे वैवाहिक जिम्मेदारियों को एक तरह बाजू रख के कुछ दिन के लिए पवित्र स्थान जाकर भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन और भगवान की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। और वैवाहिक जीवन में दान देना भगवान की सेवा के लिए, वैष्णवों की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए नियमित रूप से सर्वदयता से दान देना ये विवाह जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है। क्योंकि बाकी तीनों जो आश्रम हैं उसमें कोई धनार्जन नहीं होता है, केवल गृहस्थ आश्रम में धन की कमाई होती है। और वास्तविक रूप में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी लोग जो हैं वो केवल गृहस्थ लोगों के दान पर ही उनका चरितार्थ चलता है, मंदिर भी गृहस्थ लोगों के दान पर ही चलता है, प्रचार का कार्य भी हमारे ही दान पर सहकार्य से चलता है। इसको जानते हुए कि ना गर्व करते हुए कि देखो हम सबको संभालते हैं, ये गर्व से नहीं, लेकिन ये हमारा प्रिविलेज है, ये हमारा भाग्य है, ये हमें मौका मिल रहा है, समझदारी के साथ मौका मिल रहा है, इस भावना से भगवत कार्य को सहायता करना धन के रूप में ये भी विवाह जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। और घर में भगवान को स्वामी मानकर उनकी सेवा करना, क्योंकि कहते हैं डीटी वर्शिप, अर्च विग्रहों की पूजा। हमारा आश्रम गृहस्थ आश्रम तब है जब उस आश्रम के स्वामी भगवान हैं। नाम तो हमारा लिखा होगा डॉक्टर शानबाग घर के बाहर, लेकिन अगर आपके मन में भावना यह है कि घर के सही स्वामी जगन्नाथ जी हैं, उन्हीं को वंदन करके काम पे जाना है, उन्हीं के लिए धन कमाना है, उनकी सेवा में धन लगाना है, वापस आना है, उनको दंडवत करना है, स्वामी आपकी सेवा में दोबारा आ गए, इस भावना में घर रहेंगे तो आपका घर जो है वो गृहस्थ आश्रम है। यानी कि भगवान को सही रूप में स्वामी बनाकर अपने परिवार को चलाना। ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते थे, तो बड़े पावरफुल अधिकारी थे वो ब्रिटिशों के समय पे, मैजिस्ट्रेट थे। हाँ, ब्रिटिशों का उन पर बहुत बड़ा विश्वास था और बहुत धनी भी थे वो अपने पेशे में, लेकिन वो जब घर पे लौट के शाम को आते थे तो कहते थे कि जब मैं घर पे लौट के आता हूँ तो मेरी पत्नी को परिवार को भगवान के विग्रहों की सेवा करते हुए आरती पूजा करते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं गौलोक धाम में प्रवेश कर रहा हूँ। गृह थे गोलोक के भाई, मुझे लगता है मेरा घर जो है वो घर नहीं है, मेरा घर नहीं है, ठाकुर जी का घर है, गौलोक वृंदावन है। इसी भावना से मैं प्रवेश करता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद होता है कि मेरा परिवार सब भगवान की सेवा में लगा हुआ है। यही गृहस्थ जीवन का परिपूर्णता है, जिसमें सब परिवार के जन साथ मिलकर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, खुद भी आनंद पाते हैं, भगवान को भी आनंद देते हैं। और विवाह संबंध होने के बाद संतान प्राप्ति होती है और संतान को भगवान की भक्ति में मार्गदर्शन करना, उसको ऐसी परवरिश देना, ऐसा वातावरण देना जिसमें वो भगवान के ही जो अमूल्य मूल्य हैं, बहुत कीमती मूल्य है, उसको स्वीकार कर सके। दोज वैल्यूज विच आर वेरी प्रेशियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे एक्सेप्ट दोज, एडॉप्ट दोज, यू नो, नेचुरली आपको देखकर, आपके उदाहरण को देखकर स्वीकार करें, उनको अपने जीवन में उतारें। जो भी आप बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी आप करते हो वही उनके लिए प्रेरणा है। हमारे द्वारकाधीश प्रभु के पिताजी माताजी के विषय में हमने सुना है कि उन्होंने जीवन में कभी भी वाद विवाद नहीं किया, देयर वाज नो क्वारल अमंग्स देम, इजंट इट अमेजिंग। तो ये एक चीज ऐसी है कि उन्होंने माता पिता को कभी झगड़ा करते हुए देखा ही नहीं, ये कितना बड़ा संस्कार है एक बालक के लिए। ऐसे अनेक संस्कार है जो केवल माता पिता के व्यवहारों को देखकर बालक सीखते रहते हैं। सेटिस्फैक्शन, ये उन्होंने माता पिता के बीच में देखा है, प्रेम का संबंध देखा है, माता पिता को बड़े चैरिटेबल मूड में देखा है, तो बच्चे भी फिर चैरिटेबल बन जाएंगे। इस तरह से ऐसे व्यवहार होते हैं माता पिताओं के, जिसको देखकर संस्कार बेटे प्राप्त करते हैं, पुत्र प्राप्त करते हैं, कन्याएं प्राप्त करती हैं। इसलिए ये बड़ी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कम समय के लिए हम लोग पति पत्नी होते हैं, अधिक समय के लिए माता पिता होते हैं। खास करके स्त्री तो बहुत ही कम समय के लिए पत्नी होती है और अधिकतर वो माता के रूप में अपनी सेवा करती रहती है। और सबसे बड़ा माता का योगदान है संस्कार में। जहाँ माता का संस्कार बहुत स्ट्रांग है, वो देश भी मजबूत बन जाता है, क्योंकि बच्चे को जब संस्कार मिलते हैं, समाधान प्राप्त होता है, अच्छा कल्चर प्राप्त होता है, तो देश भी मजबूत हो जाता है। ये हमारे लिए, देश के लिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। जब हम एक स्वस्थ मन से और तन से और आत्मा से स्वस्थ संतान जब हम समाज को प्रकट करते हैं, देते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो हमारे लिए वो, हमारा वो देश के लिए भी योगदान है। एक अच्छी संतान, सुसंस्कृत संतान जो स्वस्थ है, मन से समाधानी और संतुष्ट है और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि मैं 16 साल की उम्र में सब छोड़ के चला गया, लेकिन 16 साल तक जो मेरी माता ने मुझे और पिताजी ने जो प्रेम दिया था, उससे मेरा हृदय संपृक्त था, समाधान और आनंद से और प्रेम से भरा हुआ था मेरा हृदय उनके प्रेम से। वही संतुष्टि जो तो मुझे प्राप्त हुई, वही मैं आज लोगों को देना चाहता हूँ कृष्ण भावना के रूप में, क्योंकि मैंने वो मेरे माता पिता से प्राप्त किया था, इसलिए मुझे लोगों को वो देने का मन कर रहा है। लेकिन अगर अपने बचपन में घर के वातावरण की वजह से हमको बहुत दुख पहुँचा है, बहुत ठेस पहुँची है, भावना बहुत दुख प्राप्त कर चुकी है, तो वो व्यक्ति समाज को क्या देगा? वही देगा जो उसको प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हमारा व्यवहार ऐसे हमारे घर में होना चाहिए जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा संस्कृति, संस्कार और संतुष्टि प्राप्त करें और दूसरों को मदद करने की प्रवृत्ति प्राप्त करें। और साथ में जो आजकल में बहुत कम दिखाई पड़ता है वो है माता पिताओं की देखभाल। अक्सर हम देखते हैं कि जब तक विवाह नहीं होता है तो सब माता पिता से जुड़े रहते हैं, विवाह होने के बाद सब माता पिताओं को भूल जाते हैं और परदेश में तो उनको ओल्ड एज होम में भेजते हैं, कुछ पैसे भेजते हैं, कभी कभी फ़ोन करते हैं। कितने हमें मैसेज मिलते हैं कि माताओं को ओल्ड एज में रखा है और कई साल तक वो रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका, माता पिताओं का बालकों पर प्रेम कभी कम नहीं होता है। फिर माता फ़ोन करती है और कहते हैं, बेटा जहाँ पर मैं रहती थी ओल्ड एज में, अभी तो मैं एकदम मरणासन्न हो गई, कुछ दिन की मेहमान हूँ, लेकिन मेरा आपको विनती है कि वहाँ पर आप पंखे लगाना ज़रूर, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी करना। तो वो कहता है, अरे माता तुमने इतने दिन से मुझे बताया नहीं, आज बता रही हो, अभी तो आप कह रहे हो बहुत समय कम बाकी है और अभी लास्ट स्टेज में बता रही हो। तो वो कहती है कि मैंने तो सब कुछ सह लिया, मैं भूखा भी सोती थी, मुझे रात को कोई भोजन भी नहीं मिलता था यहाँ पर ओल्ड एज होम में, और कभी पंखे भी चलते नहीं थे, फिर भी मैंने नींद कैसे भी निकाली, और ये भी सुविधा नहीं थी, वो भी नहीं थी, कभी बिस्तर भी नहीं था, कभी ओढ़ने के लिए भी नहीं था, लेकिन मैं ये सब बता रही हूँ कि आपको ये सब सहन नहीं होगा, इसलिए कह रही हूँ कि इस ओल्ड एज होम में जब आपके बच्चे आपको भेजेंगे ना, तो शायद आपको भूख के बिना, खाने के बिना सो नहीं पाएंगे आप, पंखे के बिना भी सो नहीं पाएंगे, इसलिए आपकी व्यवस्था आप अभी ठीक से करेंगे तो आपको भी यहाँ पर आने के बाद में ठीक से व्यवस्था होगी आपकी, और आप भी थोड़ा संतुष्टि से आपका बुढ़ापे का समय निकाल सकते हो। ये माता पिता हैं। जो कभी अपने बालकों को भूलते नहीं है, उनके द्वारा कितना भी कष्ट हो गया तो भी उनके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। कभी भी माता पिता अपने बालक के प्रति द्वेष या क्रोध हृदय से कभी नहीं कर सकते, कितना भी कुछ भी हो जाए, उनके तरफ से कितना भी दुख मिले, फिर भी वो माता पिता जो हैं वो उनका ऐसा कैरेक्टर ही है बना हुआ भगवान के द्वारा कि वो कभी भी बच्चे का बालक का जो है मतलब कल्याण का ही सोचते हैं। दे नेवर थिंक इल ऑफ देयर चिल्ड्रन इन ऑल कंडीशंस ऑफ लाइफ। तो इसलिए अगर हम माता पिताओं का देखभाल वैवाहिक जीवन में करेंगे तो हमारे बच्चे हमें माता पिताओं का देखभाल करते हुए देखेंगे, तब वो जब हम बूढ़े होंगे तो हमारी भी सेवा करेंगे। हमारे रघुनाथ प्रभु ये हमेशा कहते थे कि उनके घर में हम एक बार भोजन करने गए थे, तो सब डॉक्टर्स गए थे हम उनके घर पे, तो रघुनाथ प्रभु जी को उनके माता का फ़ोन आया अमृतसर से, तो वो एक्सक्यूज भी करके फ़ोन लेने गए और उन्होंने फ़ोन पे बात शुरू किया। कुछ देर बाद में रोने लगे फ़ोन पे, और ये बहुत जाहिर था कि उनकी मम्मी भी वहाँ पर रो रही थी फ़ोन पे, ये हमको समझ में आ रहा था जो उनका संवाद सुन रहे थे। बहुत देर तक ये रोते रहे और शायद वो भी रोती रही, बात बहुत हुई, फिर फ़ोन बंद किया, फिर आए और सॉरी मैं माता के साथ बात कर रहा था। तो हमने पूछा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे थे? उन्होंने कहा नहीं नहीं जब भी हमारा माता का फ़ोन होता है हम रोते हैं उनकी याद में, वो भी रोती है हम भी रोते हैं। तो बाद में उन्होंने कहा कि जब मेरे बच्चे मुझे माता का फ़ोन आने के बाद रोते हुए देखेंगे प्रेम से, उसके बाद में जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा और मैं कहीं दूर रहूंगा और वो मुझे फ़ोन करेंगे तो वो भी रोएंगे प्रेम से, क्योंकि तो उन्होंने अपने पिता को अपनी माता के लिए रोते हुए देखा है फ़ोन पर। तो ये कितनी बड़ी वैल्यू है जो एक फ़ोन के संवाद के द्वारा अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो ये हम सबको अपने माता पिताओं के विषय में ये सोचना चाहिए कि हम भी अभी बूढ़े होंगे, आज उनको निग्लेक्ट करेंगे तो हमारे बच्चे भी देखेंगे कि हमारे पिता अपने माता पिताओं को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो भी हम जब बूढ़े होंगे तो वो वही करेंगे जो उन्होंने देखा है, क्योंकि माता पिता जो करते हैं वो बच्चे के लिए परफेक्ट आदर्श होता है, अच्छा हो या बुरा हो उनके लिए तो वो आइडियल होता है। इसलिए सब लोग वो धन्य है जो अपने माता पिताओं का बड़े प्रेम से देखभाल करते हैं, शायद हम दूर भी होंगे लेकिन उनको ये जताते हैं कि हम आपके लिए हैं, डोंट वरी वी आर देयर फॉर यू, और जब भी ज़रूरत पड़ती हाजिर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी देन है हमारे लिए भारतीय संस्कृति की, और उसको बचाए रखना बनाए रखना ये गृहस्थ जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। हर एक बूढ़े व्यक्ति को उस भावनाओं को अनुभव करना नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे बच्चे मुझे भूल कर चले गए, ऐसा अपने अपने ज़िंदगी में मस्त हैं और हमारी तरफ पूछने के लिए भी कोई नहीं है। अब जाएंगे सुबह कभी चलने के लिए वॉकिंग में तो बहुत बूढ़े लोग वॉकिंग में आते हैं, उधर बीच में बैठ जाते चाय पीने के लिए, कभी कान लगाकर सुनना वो क्या बात करते हैं, बोलेंगे पैर दुख रहा है, हार्ट में हो रहा है, ECG निकालना है, डॉक्टर को दिखाना है, और बच्चे आते ही नहीं हैं मिलने के लिए, फ़ोन भी नहीं करते हैं, खाली रुपया भेज देते हैं वो भी कभी कभी भूल जाते हैं, और अकेले हम लोग हैं यहाँ पर, सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस सब कुछ हमारे पास है, लेकिन बच्चे हमारी देखभाल नहीं करते हैं। अधिकतर आपको ये सुनाई पड़ेगा, शरीर की बीमारी के बारे में चर्चा करते सुनाई पड़ेगा, या तो बच्चे के विषय से जो दुख है उनको वो सुनाई पड़ेगा, निग्लेक्ट, वर्थलेसनेस, यूजलेसनेस की भावनाएं प्रकट करते रहते हो। वो भावनाएं बच्चों की तरफ से माता पिता को कभी भी नहीं मिलना चाहिए, और ये गृहस्थ आश्रम का मेरे विचार से एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है माता पिताओं को वो आश्वासक वातावरण देना कि हम आपके लिए हैं, पत्नी को साथ लेकर पति को साथ लेकर अपने इस कर्तव्य को निभाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में जब हमारे सब व्यवहार ऐसे परिपूर्ण होंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। जब हमारे निजी कर्तव्यों में गृहस्थ आश्रम के जो बेसिक हैं, बेसिक कर्तव्य हैं, उसमें अगर हम अच्छी तरह से गुजरेंगे, अच्छी तरह से सब सक्सेस होगा आपका, तो भगवत प्रेम जो है वो प्राप्त करने में आसानी होगी, क्योंकि जो समझे आप बहुत अच्छा जप करते हैं, 16 माला करते हैं, 20 माला करते हैं, 25 माला करते हैं, लेकिन पत्नी से गलत व्यवहार करते हैं, माता से अलग व्यवहार करते हैं, बच्चों को गालियाँ देते हैं और अलग अलग से क्रोध प्रकट करते हैं, तो हृदय में वो कृष्ण भावना नहीं पना पाएगी, उसकी परवरिश नहीं हो सकती है। व्यवहार जो है वो कृष्ण भावना का एक प्रस्तुति है। हमारी कृष्ण भावना कितनी हमने कमाई है जप करके, साधना करके, नियम पालन करके, सेवा करके, जो कृष्ण भावना हमने प्राप्त की है उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है हमारा व्यवहार, वैष्णव शिष्टाचार, वैष्णव व्यवहार, वो जब हम प्रकट करेंगे तो उसको देखकर ही भगवान, देखकर ही बाकी लोग भक्त बन जाएंगे। तो ये व्यवहार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहार से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होती है, भगवान की सेवा प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है। तो मैं तो इतना आदर्श नहीं हूँ, सब पढ़ लिख के और रट के आया हूँ, लेकिन हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो गृहस्थी जीवन है वो केवल मामूली कर्तव्य निभा के समाप्त नहीं होता है, उसके उच्चे आदर्श हैं, श्रेष्ठ आदर्श हैं। जब उसको हम निभाएंगे तो हमारे गुरुजी हमारे पर गर्व करेंगे, श्री कृष्ण हमारे पर गर्व करेंगे कि मेरा कोई शिष्य है, गुरुजी कहेंगे मेरा भक्त है। और ऐसे गुरुजी की भी, गुरुजी का भी गौरव बढ़ता है और ऐसे भगवान का भी गौरव बढ़ता है जब ऐसा भक्त उसके प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस शुभ अवसर पर मैं आप दोनों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की कोशिश को भगवान हमेशा यश दें और आपका व्यवहार और कृष्ण भावना ऐसी श्रेष्ठ हो कि आपके उदाहरण से सभी घर के लोगों को सबसे पहले प्रसन्नता मिले, समाधान मिले, और आपके उदाहरण को देखकर सभी दुनिया के लोगों के लिए भी प्रेरणा मिले, और आप लोग खुशी से, समाधान से, सुख से, संतुष्टि से अपने गृहस्थों को, गृहस्थी को निभाएं और अपने जीवन को धन्य करें। हरे कृष्णा। अल्टीमेटली समसिद्धिर हरि तोषणम, जब हरि को आप संतुष्ट करेंगे आपका गृहस्थ जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।